ओम शांति। अभी जो है एक आपके सामने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होने वाला है। हमारे बीच ज्ञान सरोवर के दो वरिष्ठ भाई हैं, सुरेश भाई जी और हिम सिंह भाई जी। हम आप दोनों से आपका अनुभव सुनेंगे। अनुभव सुनना और सुनाना, ये दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। और बाबा कहते हैं कि अनुभव बहुत बड़ी शक्ति है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करके अपने अनुभव से उसे बताता है, या इस ईश्वरी जीवन में जो कुछ उसने अनुभव किया है, यदि उसका वर्णन वो अपने अनुभव के आधार पर शेयर करता है, तो ये हम सबको बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं हमें बहुत प्रेरणा भी मिलती है, पुरुषार्थ में बल मिलता है। आप में से जो लोग भी पुराने होंगे, 25-30 साल पहले जो ज्ञान में आए, आपको पता होगा कि तब 90 से पहले पहले या 2000 से पहले पहले क्लासेस इतनी नहीं हुआ करती थी। क्लासेस का प्रचलन इतना नहीं था। हमारी जो दादियां थी वही क्लासेस कराया करती थी मोस्टली। बहुत कम स्पीकर्स थे, आज तो स्पीकर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। तब स्पीकर्स बहुत कम थे, सूरज भाई, आतम भाई, कुछ गिने चुने भाई बहने क्लासेस लेते थे, नहीं तो सब दादियां। और दादियां क्या सुनाती थी, केवल अनुभव सुनाती थी। मम्मा ने ये किया, बाबा ने ये किया, हमारी जो दीदी थी उनका ऐसा था, व्यवहार ऐसा था, प्रशासन उनकी कुशलता ऐसी थी, उनका विद्यार्थी जीवन ऐसा था। तो ये अनुभव आत्मा को बहुत बल प्रदान करते हैं। ज्ञान की बातें तो हम सब सुनते ही हैं। आज हम इन दो भाइयों से इनके जीवन का अनुभव का कुछ अंश सुनेंगे। ये दोनों भाई अपने आप में एक अच्छे पुरुषार्थी हैं और जो भी यज्ञ की सेवाएं हैं उससे काफी हद तक जुड़े हुए हैं। अपने अपनी सेवाएं करते हुए ज्ञान योग के द्वारा भी काफी अच्छी सेवा करते हैं। और ज्ञान, ये ज्ञान सरोवर की शुरुआत से ही आप दोनों यहाँ पर आ गए थे। सुरेश भाई जी, आप कर्नाटका से हैं, कर्नाटका के शिमोगा से हैं आप, और आप जो हमारा हुबली सब जोन है उससे कनेक्टेड हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1998 में आप ज्ञान सरोवर में आ गए थे। वैसे तो ये 1981 में ही समर्पित हो गए थे। 1978 में बाबा का ज्ञान मिला आपको और 1981 में आप हुबली जो सब जोन है हमारा उसमें आप समर्पित हो गए थे। और उसके कनेक्शन में एल्लापुर करके एक स्थान है जहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग, जो लौकिक टीचर्स होते हैं उनको वैल्यू एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाती थी, अभी भी दी जाती है। तो उसका एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहां पर यज्ञ की तरफ से खोला गया था, जिसमें कर्नाटका सरकार की तरफ से 200-250 टीचर्स का एक एक ग्रुप आता था और 15-15-20-20 दिन वहां रहते थे वो लोग, और उनको वैल्यू एजुकेशन दिया जाता था। आप उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल रह चुके हैं और अपने आप में इनको गीता का बहुत अच्छा ज्ञान है। कर्नाटका में हम सब जानते हैं कि साधु संत महात्माएं बहुत होते हैं, तो उनकी सेवा का भी आपको बहुत अच्छा अनुभव है। तो हमें खुशी है आज हमारे बीच सुरेश भाई जी हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं सुरेश भाई जी। हमारे बीच हेम सिंह भाई जी हैं, आप कोटा से हैं, कोटा से समर्पित हैं। आप वैसे रहने वाले राजस्थान के नागौर से हैं और पिछले करीब 30 वर्षों से बाबा के ज्ञान में हैं और 27 सालों से आप यहाँ पर ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं यहाँ के सिक्योरिटी विंग, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे दे रहे हैं। साथ ही साथ आप एक ज्ञान योग में भी आपकी अच्छी रुचि रहती है, जिसके कारण आप सिक्योरिटी सर्विसेज विंग, सोशल विंग और जो हमारा यूथ विंग है उसकी सेवाओं में भी आप काफी संलग्न रहते हैं। और समय प्रति समय जो भी हमारे डिफेंस के लोग हैं या जो हमारी पुलिस है, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की तरफ से जो उनके कार्यक्रम चलते हैं उसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान भी रहते हैं तनाव मुक्त जीवन शैली पर, रिलेशनशिप पर, हैप्पी लिविंग पर। तो आज ये दो भाई हमारे बीच हैं, अधिक समय न लेते हुए हम इनके अनुभवों को सुनेंगे। और सबसे पहला प्रश्न हम सुरेश भाई से जी से पूछेंगे कि सुरेश भाई जी, आपको बाबा का ये ज्ञान कैसे मिला?
ओम शांति। कर्नाटक में एक शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, हम छोटे से गांव में रहने वाले। एक्चुअली हम कभी भी सोचा नहीं था हमको ऐसे परम सौभाग्य मिलता है करके, क्योंकि हम हमारे गांव में आठवीं पढ़ रहा था उस समय, हमारे गांव में अच्छा बारिश नहीं आया, तो बारिश आए तो हमारा खेती अच्छा आ जाता है, बारिश नहीं आए तो खेती अच्छा नहीं आता। उस समय बहुत मुसीबत आ गया, तो मम्मी पापा ने मेरे को क्या किया, आठवीं तो गांव में क्या पढ़ के क्या करेंगे, आठवीं तो पूरा हो गया तो दूसरे घर में गाय चराने भेजा। तो स्कूल छोड़ के एक साल हम गाय चराने दूसरे घर में गया, तो 200 किलो चावल, माने 2 क्विंटल चावल के लिए एक वर्ष उनके घर में गाय चराना था। तो मेरे को छोटेपन से पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है, तो घर में मैं ही पुजारी था, तो गणेश को और सरस्वती को बहुत पूजा करता था। तो हम छोटेपन से स्कूल में क्या पुस्तक रहा था ना, उसमें क्या गणेश का और सरस्वती का श्लोक वगैरह सीखा था। तो हम जंगल में जाके गाय का चराते चराते ये सारा श्लोक खंड करता था, तो हम बोलता था सरस्वती गणपति ऐसे हमको पढ़ना है, लेकिन ऐसे क्या हो गया हमारा जीवन ऐसे। तो एक साल पूरा होने के बाद फिर वापस घर आया, तो मम्मी ने फिर मेरे को सोचा बहुत दुखी है करके, मेरे को अपना नानी के घर में जाएंगे तो 15 दिन रह के आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा करके मेरे को नानी के घर में भेजा। तो 15 दिन रहते उधर, हमारा मामा ने शिवमोगा जिला में कुछ ऑफिस में कार्य करता था, उन्होंने उसी समय घर आया था। तो मेरे को पूछा, क्या भाई स्कूल छोड़ दिया करके? स्कूल छोड़ दिया करके ऐसे बोले तो मेरा आंखों में गंगा जमुना बहने लगा। तो उन्होंने बोला, तो आपके इतना पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आप नानी के घर में रहो, इधर नजदीक स्कूल है तो सर्टिफिकेट ले आके एडमिशन हो जाओ। तो 9th और 10th में पास हो गया, तो नानी को बहुत मदद किया, उसके कारण मामा को बहुत अच्छा लगा। उसके 11वीं 12वीं भी पूरा हो गया, तो उसके बाद हम मामा ने क्या किया, इतना अच्छा पढ़ता है तो शिवमोग्गा में लेके आया, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। लेके आने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज है, सह्याद्री कॉलेज करके गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें फी वगैरह कुछ नहीं है, केवल एग्जाम फीस भरना पड़ता। तो मामा ने स्कूल में एडमिशन किया, तो एक नया जीवन आ गया। तो उसके बहुत भक्ति करता था, जहां मंदिर मंदिर में घूमता था, तो एक स्वामी जी का मंदिर था, वो राघवेंद्र स्वामी जी बहुत ही प्रचलित है, तो रोज कॉलेज पूरा होते हम मंदिर में जाता था वो राघवेंद्र मंदिर में। तो उसके साथ साथ दूसरा एक स्वामी जी का था, 45 डेज कंटिन्यू प्रवचन चलता था, तो प्रवचन सुनने गया। तो हम जैसे हमारे तरफ लिंग दीक्षे बोलता है, मैंने छोटे छोटे लिंग इससे बना के रखता है, तो लिंग दीक्षे मंत्र दीक्षे वगैरह सब ले लिया। तो कॉलेज में जाते ही विभूति पट्टा लगा के हम कॉलेज में जाता था, लोग सभी स्वामी जी आया ऐसे करता था मेरे को, फिर भी मेरे को ऐसे बहुत भक्ति में इंटरेस्ट था। तो उस स्वामी जी का प्रवचन 45 डेज पूरा हुआ, उसी जगह पे दूसरे दिन एक एग्जीबिशन रखा था, तो ये आध्यात्मिक चित्र गोष्ठी करके चित्र प्रदर्शनी बाबा का, तो 15/12/1978 शाम को गुरुवार का दिन 6 बजे हम उधर एंट्री हो गया। तो जस्ट एग्जीबिशन स्टार्ट हो रहा था, तो उसमें 2 चित्र रखा था, हम किस राघवेंद्र स्वामी जी को पूजा करता था, वो राघवेंद्र स्वामी जी का समाधि को छोटे छोटे स्वामी लोग पूजा करते हैं, उसके साथ राघवेंद्र स्वामी जी हनुमान को भक्ति करता है, हनुमान राम को पूजा करता है, राम ईश्वर एक ज्योति को याद करता है। फिर हम किस स्वामी जी से 45 डेज हम प्रवचन सुना ना, वो स्वामी जी अपना बड़ा स्वामी का गद्दी को पूजा कर रहा है, समाधि को, तो वो बड़ा स्वामी गणेश को याद कर रहा है, तो गणेश ने पार्वती को याद कर रहा है, पार्वती शंकर को याद कर रहे हैं, शंकर शिव ज्योति को याद कर रहे हैं। मैं उधर जाते ही मेरे को एक क्लिक हो गया, इधर आएंगे तो सब लोग एक साथ मिल जाएगा करके। तो 15/12/1978 में तो वो ज्ञान हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद एक धक से हम बाबा का पूरा ज्ञान में निश्चय हो गया, सेवा करना तो बहुत अच्छा मेरे को लगा, सेंटर में बहुत अच्छा सेवा करना चालू किया, तो यही ज्ञान में आने का।
तो सबका पिता आपको मिल गया, तब से लेकर के आपने अपना जीवन समर्पित किया और अब तक बहुत ही समर्पित भाव से बाबा के घर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक प्रश्न लोग जनरली हम लोगों से पूछते हैं, सबसे पूछते होंगे, हम लोगों से भी लोग पूछते हैं कि आप समर्पित क्यों हुए? आप घर में रह के भी सेवा कर सकते हैं, माँ बाप को देखते हुए, घर परिवार को संभालते हुए भी आप सेवा कर सकते हैं, समर्पित होना क्या जरूरी है? मैं यही प्रश्न हेम सिंह भाई जी से पूछना चाहूंगा कि आपने क्या सोच करके ये निर्णय किया कि मुझे समर्पित होना है? आप घर में रह के भी तो बाबा की सेवा कर सकते थे, ऐसा क्या देखा आपने इस जीवन में?
ओम शांति। घर में रहते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन जब मधुबन आया तो मधुबन बहुत अच्छा लगा, यहाँ का वायुमंडल बहुत अच्छा लगा, यहाँ जो बाबा का कमरा था उसमें बैठ के जो तपस्या करते थे उसका एक अलग ही आनंद था। और फिर जब सोचा कि भाई कोई बंधन ही नहीं है, भगवान आके पढ़ा रहा है और बाप दादा यहाँ पे आ रहे हैं, रोज मुरली चला रहे हैं, साल के अंदर 12 बार भगवान से मिलना, डायरेक्ट मिलना, तो ये सौभाग्य कहाँ मिलेगा। और एक चांस भी मिल गया, ड्रामा अनुसार रहने का चांस मिल गया। फिर यहाँ बड़ों की क्लासें मिलती है, पांचों खंडों की जो बड़ी बड़ी दीदियाँ हैं, बड़े बड़े भाई हैं, उनके अनुभव यहाँ रह के सुनने को मिलता है, उनके जीवन को देखने का मिलने का, तो ज्ञान भी स्पष्ट था। और ये सब कुछ इतने सारे फायदे थे, तो फायदों को देखते हुए निर्बंधन भी थे, इसलिए हम समर्पित हो गए और आज तक भी बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं
जी। एक चीज और देखने में आता है, हमारे देश में साधु संत महात्माओं की बहुत इज्जत है। जब भी हम किसी संत महात्मा को देखते हैं तो न चाहते भी हमारा मस्तक उनके आगे श्रद्धा से झुक जाता है। परंतु इसका एक दूसरा जो पक्ष है वो ये है कि हम साधु संत महात्माओं को रेस्पेक्ट तो देते हैं, लेकिन अपनी संतान यदि कोई संत और महात्मा बनना चाहे तो ये किसी भी माता पिता को स्वीकार्य नहीं होता है। वो तरह तरह के जतन करते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची इस मार्ग पर न जाए, तरह तरह के रोड़े अटकाते हैं, वो सहजता से इस चीज को स्वीकृत नहीं कर पाते हैं। आप जब ज्ञान में आए हम सिंह भाई जी, क्या आपके परिवार की तरफ से कोई बंधन आया या आपके समर्पित होने के डिसीजन को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया?
तो मेरा पहले का जीवन कुछ ऐसा ही था, खतरनाक वाला, तो इसलिए घर वालों ने सोचा ये तो इतने अच्छे मार्ग पे जा रहा है। लेकिन फिर भी माँ का थोड़ा मोह रहता है, माँ बाप भी ज्ञान में आ गए थे।
आपने कहा कि खतरनाक वाला जीवन था, थोड़ा सा वो भी बता दी क्या खतरनाक वाला जीवन था।
तो पहले हम गांव में रहते थे तो एकदम सीधे साधे थे, और फिर हम शहर में गए, वहां पढ़ाई किया और वहां पिताजी की सर्विस थी, तो हुआ क्या कि ऐसे ही दोस्तों के साथ रहते रहते पहले तो बहुत सीधे साधे थे, और वहां एक कोई दादा था तो उसकी हमने धुलाई कर दी, तो उसकी धुलाई कर दी तो हम दादा बन गए वहां के। और लौकिक में भी हम राजपूत थे तो हमको नशा होता था कि हम राजपूत है, किसी से डरने वाले नहीं है, मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, तो लड़ने झगड़ने से हम डरते ही नहीं थे। तो इस प्रकार से हम वहां के दादा बन गए, और जो भी आता था बोला कि भाई मेरे को इसने ये बोला, चलो उसके घर में ही जाके उसको वहीं निकाल के उसकी धुलाई वहीं कर देते थे। तो इस तरह से संग हो गया और दोस्तों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और इर्द गिर्द लोग रहते थे, खाना पीना भी सीख गए, तो इस प्रकार का खतरनाक जीवन हो गया था। और जब बाबा का ज्ञान मिला तो एक अच्छा संग मिला तो परिवर्तन हो गया। पहले ये लगा था कि परिवर्तन तो होना पर होए कैसे, सब बोलते हैं ये नहीं करो वो नहीं करो, पर क्या करें कैसे ये परिवर्तन होगा। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए, बहनों के संपर्क में आए, तो एक उन्होंने सही दिशा दी, और बाबा तो हर समय मुरलियों में शिक्षा देता ही है, तो एक मालूम पड़ा कि भाई इस जीवन को भी हम अच्छा बना सकते हैं, तो एक श्रेष्ठ संघ मिला, उससे जीवन परिवर्तन हुआ।
माँ बाप को अक्सर ये एक्चुअली जिनके बच्चे दादा बन जाते हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके माँ बाप को रहती है, क्योंकि सारी शिकायत उनके पास ही आती है, तो माता पिता को लगा कि चलो अच्छा है, कम से कम अच्छी जगह तो जा रहा है। सुरेश भाई जी, यही प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आपके घर वालों से आपको सहज स्वीकृति मिली या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा?
एक्चुअली हम छोटेपन से बाहरी होने के कारण, तो जब से आठवीं पूरा हो गया तो हमारा कनेक्शन ज्यादातर करके और उस तरफ कनेक्शन कट हो गया, तो बाहर हम भक्ति करते करते हम बाबा का ज्ञान तो मिल गया, बहुत ही निश्चय हो गया। निश्चय होने के बाद मेरे को सरेंडर होने का कोई इच्छा नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा का कुछ नौकरी करके मम्मी पापा को बहुत अच्छा संभालना, बाबा का ज्ञान में बहुत अच्छा रहना, ऐसे बहुत संकल्प चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, हमारा लोकल सेंटर से दूसरा एक सेंटर, नया सेंटर खोला है, तो नया सेंटर उद्घाटन करने के लिए उस जोन का, कर्नाटक का हुबली एक जोन है, तो आपको मालूम होगा बसवराज राजु ऋषि जी करके है, वो उद्घाटन करने के लिए उस समय उधर आया था। तो हम सभी शिवमोग्गा वाले अंदर, वो सेंटर वाले सब वो नया सेंटर उद्घाटन के लिए उधर गया था, तो बसवराज भाई जी हुबली से उनका सब लोग उधर आया था। तो सवेरे से शाम तक सेंटर उद्घाटन हुआ, भट्टी ब्रह्मा भोजन वगैरह पूरा हुआ, तो शाम को रिटर्न वापस अपना अपना प्लेस में जाने के लिए हम बस स्टैंड में पहुंच गया। तो बस स्टैंड में आते ही तो बस आना लेट हुआ, हुबली का बस भी आना लेट हो गया, तो शिवमोग्गा तरफ जाने का बस भी लेट हो गया। तो बसवराज भाई जी ने हरेक को प्रश्न पूछा, तो नया कौन कौन कुमार है हाथ उठाइए, तो हम तीन चार लोग कुमार था हाथ उठाया। तो बसवराज भाई जी ने मेरे तरफ इशारा किया, तो आप क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं? तो मैं अभी तो बीए पूरा हो गया, तो एग्जाम किया है, रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आने के बाद हम नौकरी करेंगे, नौकरी करके बाबा का ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, तो मम्मी पापा को भी संभालेंगे, ऐसे बोले। ऐसे बोलते ही बसवराज भाई जी ने बोला, तो आपको इतना कुमार जीवन है, इतना अच्छा है, सच्चा ज्ञान के प्रति भी आपको निश्चय है, तो समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। अभी तक हमको समर्पित क्या मालूम है, क्योंकि वो 81 केवल एक ही दो साल हुआ ज्ञान में, तो समर्पित माना क्या हमको सोच भी नहीं, मालूम ही नहीं था। तो उस तक उनका बस आया, वो चले गया, तो उन्होंने बोला क्या भी विचार करके आप अपना टीचर बहन को बोलो करके, वो चले गया। तो मेरे को अंदर ही सोचने लगा क्या करे, समर्पण माना क्या है, समर्पण माना क्या है। तो हमारे से भी पुराने लोग था ना ज्ञान में, तो उनको पूछा देखो समर्पण माने क्या है। एक एक व्यक्ति ने बोला आप समर्पण नहीं होना है, नौकरी करो, मम्मी पापा का संभालो, तो ज्ञान में भी रहो। एक एक ने बोला नहीं नहीं समर्पण होना, आप कितना भाग्यशाली है, समर्पण हो जाओ। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग डिसीजन बोलना चालू किया। तो मेरे को बहुत आश्चर्य लगा क्या करो, तो बाबा के प्रति इतना निश्चय, इतना प्यार है। तो फिर हम रूम पे, हमारा बस भैया, हम अपना रूम में चले गए, तो हम दोनों रूम में था, हम और दूसरा एक भाई इंजीनियर भाई था और मैं, दोनों बाबा के बच्चे, हम छोटे सा रूम बनाया था, रूम में एक छोटे सा बाबा रूम बनाया था, एक बेडशीट बांध के वो एक लोग व्यक्ति बैठ सकता है। कोई भी हम भोजन पकावे तो बाबा को हम भोग अर्पण करके स्वीकार करता था। तो हमारे जैसे ज्ञानामृत में बाबा का चित्र आता है ना, उसमें दीवार में लगा के कुछ भी करे हम बाबा को अर्पण करके स्वीकार करता था। मैं जाके, वो भाई तो सो गया, आप क्या भी करो आपका डिसाइड बाबा जाने, तो मैं बाबा को बोला बाबा क्या भी हो मेरा जीवन का डिसाइड आपके हाथ में है। तो हम वो छोटा सा बाबा रूम में, हमारे रूम में जाके बैठा। तो ऐसे योग करते करते करीब 2:30 बजे मेरे को एक कैसे रोशनी जैसा आ गया, इतना रोशनी, बच्चे आप सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। मेरे को संग कैसे सरेंडर होना, तो फिर सरेंडर हो जाओ इसे बोलते ही मेरा क्या कंफ्यूज था, क्या करना क्या नहीं करना, तो सारा क्लियर हो गया, सरेंडर होना ही है, सरेंडर होना। तो इतना क्लैरिफिकेशन आ गया, तो सरेंडर होने के लिए रेडी हो गया। तो फिर सवेरे होते ही मैं इस सेंटर पे गया, दीदी को बोला दीदी दीदी मैं सरेंडर हो जाऊंगा, तो बसवराज भाई जी को फोन करके बता देना। तो उस समय मनन 81 के बात है, तो कोई भी एक सेंटर में कुमार भाई सरेंडर होता है, मैंने सेंटर टीचर को भी बहुत रेस्पेक्टेड, बहुत अच्छा रहता है। तो उन्होंने बहुत खुशी से बोला बसवराज भाई जी को फोन करके, तो बसवराज भाई जी ने बोला 15 डेज के बाद फिर मैं आएंगे तो सरेंडर हो जाना। फिर उस 15 डेज के अंदर मैं सारा मम्मी को बोलना, पापा को बोलना, सबको मना करना, ये सब ये करना, फिर हमारा पढ़ाई के ना हमारा मामा उनको बोलना, तो फिर हम बाबा को याद करके करके मैं गया। तो मम्मी पापा को बोला मम्मी पापा मेरा ऐसे ऐसे है, तो अभी पढ़ाई तो रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आने तक एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम है उसमें हम सेवा करते रहेंगे, नौकरी मिलने के बाद नौकरी में चले जाएंगे। तो फिर मम्मी ने बोला तो आपका जीवन ऐसे ही, आपको भगवान कैसे बोलता ऐसे कर दो, बोल दिया। तो एक परमिशन हो गया। फिर मम्मा के पास, माँ के पास, मामा के पास आया तो पूछा मामा ने ऐसे ऐसे हुआ, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, रिजल्ट आने के बाद फिर नौकरी में जाएंगे, उस तक हम ये आश्रम में सेवा में नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं आपका मन में क्या आता है ऐसे करो ऐसे, वो भी बोल दिया। तो परमिशन मिल गया, तो उसके बाद किसी का भी रुकावट नहीं आया, तो बहुत सक्सेसफुली हम पूरा 1981 से सरेंडर है। तो रेगुलर उस समय से भी मधुबन में आना चालू किया, हर ग्रुप में बाबा मिलने आता था। तो उसके बाद में आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे तो उसका आंसर बताएंगे कैसे अनुभव।
मैं आपसे ही एक प्रश्न और ये पूछता हूँ, मैंने अक्सर देखा है सुरेश भाई जी को, इनके दिनचर्या बहुत एक्यूरेट है, ये अपने नियम धारणाओं में बहुत पक्के हैं, और बाबा कहते हैं कि ये जो नियम और सिद्धांत है आत्मा को बहुत बल प्रदान करते हैं। कई बार बाबा कहते भी हैं कि अपने जीवन को नियमों में बांधना चाहिए, अपने लिए कुछ छोटे छोटे नियम बनाने चाहिए, इससे आत्मा की बहुत उन्नति होती है। सुरेश भाई जी, क्या आपने अपनी स्व उन्नति के लिए कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं?
तो जरूर नियम बना के रखा है, हम कभी भी जिंदगी में एक बार हम एक्चुअली इसका एक घटना मैं बता देता हूँ, उसके बाद एक बार हुबली में हम विश्व नवा निर्माण करके कन्नड़ा मास पत्रिका है उसको प्रिंटिंग हम सभी हमारा आश्रम में भी सब करता था। तो हम उसमें उस समय इस तरह का कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो एक एक अक्षर को जोड़ना पड़ता था, तो सारा दिन रात सेवा रहता था। तो लेकिन हमको योग करने का इतना इंटरेस्ट है, लेकिन सवेरे से शाम तक इतना सेवा होने के कारण तो बहुत सुस्त हो जाता, थक जाता था। लेकिन एक बार ऐसे हर रोज बाबा अमृत वेले कुछ बोल रहा था, तो बाबा क्या करे अमृत वेले कभी कभी मिस हो जाता है, तो ऐसे करके बाबा का याद में सो गया था। तो उस समय हम जहाँ रूम में सोया था तो एक घड़ी था, उसमें 1 2 3 से रिंग बजता था वो, तो करेक्ट 3 बजे ऐसे सुरेश 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 3 बार वो बोलते ही घड़ी में भी 1 2 3 से, तो मेरे को सडन जागृत हो गया। तो बाबा केवल हम छोटे से क्या भी बोले बाबा कैसे सुनता है। उसी दिन से कभी भी मैं अमृत वेले मिस नहीं किया। तो अमृत वेले सारा जीवन में, संगम युग में, सारा कल्प में संगम युग सर्वश्रेष्ठ समय है, तो संगम युग में अमृत वेले सर्वश्रेष्ठ समय है। बाबा ने बहुत मुरली में बताया है कि अमृत वेले बच्चों के लिए सब खजाना खुले रखा है, तो सब कुछ बच्चे प्राप्त कर सकते हैं बाबा से। तो अमृत वेले के बाद माना 5 बजे के बाद भक्तों का लाइन लग जाएगा, उसका पीछे हम भक्तों का पीछे खड़े होना पड़ेगा, बच्चे होकर बाबा का भक्तों का लाइन में खड़े होना बाबा को अच्छा नहीं लगता, इसके लिए अमृत वेले कभी भी मिस नहीं करता, और मुरली में कभी भी मिस नहीं करना है। संगम युग में भगवान हम बच्चों के साथ वार्तालाप करने का, भगवान अपना विचार को ट्रांजैक्शन करने का एक ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है मुरली। मुरली मिस किया तो बाबा के साथ बात करना मिस किया, ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है मुरली, कभी भी मिस नहीं करना, ये भी कभी भी नहीं करेंगे। तो फिर शाम का समय का योग भी मिस नहीं करेंगे। फिर हमारा कोई भी बाबा ने सेवा दिया, कुछ भी सेवा हो, स्टार्टिंग से भी 81 से भी मेरा रजिस्टर है, आप किसी को भी पूछ सकते हैं, कोई भी बाबा ने सेवा किया, छोटा सेवा बड़ा सेवा क्या भी हो। तो बाबा ने हमको उधर यल्लापुर में रहने के समय ऐसे यल्लापुर में रहने के समय में हम सवेरे से शाम तक सारा मास्टर को संभालना, टाइम टेबल मेंटेन करना, सब मेरा सेवा रहता था। लेकिन उस समय हम बाथरूम भी सफाई करता था, क्योंकि 5 बजे से 5:30 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाता था। हम 2 बजे उठकर सारा बाथरूम सफाई करता था। तो सवेरे से शाम तक हम ऐसा करने से लोगों का आश्चर्य हो जाता था। केवल हमारा एक्टिविटी से उनको आश्चर्य लगता था, इतना सब बिजी होते हुए भी इनका जीवन कैसे। तो बाबा ने ऐसे ऐसे सेवा किया करने के लिए हमको मौका दिया, तो परम सौभाग्यशाली हूँ। फिर अभी वर्तमान समय अमृत वेले मुरली क्लास, लोगों को ज्ञान बांटना। देखो हमारे पास क्या ज्ञान है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। इसके लिए ये बट्टी का, ये इस वार्तालाप के थ्रू मैं आपको एक मैसेज देंगे, जीवन में कभी भी अमृत वेले मिस नहीं करना। अपना अपना सेवा के हिसाब से 2 बजे से 5 बजे के बीच में आधा घंटा पौना घंटे हो जरूर बाबा को याद करना, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना। दूसरा, मुरली क्लास कभी भी मिस नहीं करना, उसको पूरा यूटिलाइज करना। और तीसरा, रोज एक ना एक व्यक्ति को ज्ञान ट्रांजैक्शन करना। ज्ञान बोलना ही है, कोई सुने या नहीं सुने, कुछ ना कुछ रीति से। देखो हम दुनिया में आप हमारे से भी ज्यादा आप लोगों के साथ कनेक्शन में बहुत लोग आते हैं, तो लोगों को ज्ञान देना, कुछ ना कुछ युक्ति से उसको ज्ञान बताना, और हफ्ते को एक बार सेंटर पे आने के लिए उनको इनवाइट करना। तो ज्ञान बोलने से अविनाशी बीज आज या कल फल देगा ही जरूर। और तो चौथा है, रोज ट्रांजैक्शन, आत्मा परमात्मा परंधाम, 3 बातें याद रखना। सेकंड में ऊपर जाना, बाबा को टच करना, आना, आते जाते रहना। अभ्यास करेंगे ऑटोमेटिकली दुनिया से न्यारे बाबा को प्यारे बन जाएंगे। और पांचवा है, शाम का समय कभी भी 6:30 से 7:30 अमृत वेले जैसा महत्व। और सोने के पहले रोज का हिसाब किताब बाबा को अर्पण करके बाबा का याद में सो जाएंगे। तो बाबा ने मुरली में बोला 93 का मुरली में, तो रोज का हिसाब किताब अर्पण करेंगे तो धर्मराजपुरी में हिसाब किताब देने का जरूरत नहीं है। तो आप सोचिए, रोज देने का ईजी है ना, केवल 5 मिनट बाबा के सामने बैठकर। तो हम ऐसे करते हैं, उसके साथ 21 टाइम्स कोई ना कोई समान लिखते हैं, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। 21 टाइम्स रोज हम लिखते हैं सोने के पहले, आधा घंटा योग करके, कुछ मुरली 10 लाइन अव्यक्तवाणी पढ़ के हम सोते हैं। ये हम रेगुलर हमारा टाइम टेबल वाइज जी।
हमने कई बार अक्सर देखा है ये चीज, हमने सुरेश भाई में विशेष देखा है, 3 चीज जो दिखती है। अब मुरली 21 टाइम्स लिखना कमरे वाली बात तो नहीं दिखती, पर जो चीज दिखती है वो हमने देखा है, अमृत वेला, नमः शाम का योग और मुरली क्लास। इतने वर्षों में कभी हमने सुरेश भाई जी को मिस करते नहीं देखा। और बाबा कहते हैं कि जिसकी ये 3 चीजें पक्की है उसका भला निश्चित है, भगवान उसकी नैया को पार लगा ही देगा। और वैसे ही इनकी सेवा में भी बहुत रुचि रहती है, कभी किसी को ना नहीं करते, जो भी सेवा इनको दी जाए हमेशा हाजिर। जबकि हम लोगों से ये बहुत सीनियर हैं सुरेश भाई जी, उसके बावजूद भी अगर हम लोग भी कुछ अगर कहें, हाँ भाई जी हो जाएगा, कर देंगे। और जब सेवा की बात हो रही थी तो मेरे मन में हेम सिंह भाई जी का ख्याल आ रहा था। जहां तक सेवा की बात है, आप में भी बहुत सारी खूबियां हैं, और आपकी एक विशेष खूबी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसी को भी ज्ञान अगर प्यार से सुनाना हो तो वो चीज हम हेम सिंह भाई जी से सीख सकते हैं। कई बार हमारे बीच में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारी धैर्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं, हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहते हैं, हमको वो इरिटेट करते हैं, ऐसे जानबूझ के प्रश्न पूछेंगे, हमें क्रोध दिलाएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, उसको आप हेम सिंह भाई जी के सामने लाके खड़ा कर दीजिए, उसको धीरे 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 प्यार से, हमने देखा कभी भी कोई कैसा भी प्रश्न पूछ ले, कितना भी निगेटिव बात कर ले, कभी भी इनके चेहरे पर गुस्से की रेखा नहीं आती, भाई अब क्या बोल रहे हैं ऐसे। कई बार संस्था के बारे में, हमारी बहनों के बारे में, भाई के बारे में लोग बोलते हैं उल्टा से, पर इनकी विशेषता है कि कितना भी नेगेटिव कोई क्यों ना हो, उसको धीरे धीरे प्यार से उसको एकदम वो रास्ते पर लेकर के आते हैं। तो ज्ञान बहुत अच्छी तरह सुनाते हैं। और बाबा कहते हैं कि जो मेरे अनन्य सेवाधारी बच्चे हैं उनको मैं बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां कराता हूं। हमारी सेवा और तपस्या का फल यही है कि भगवान हमें इस संगम पर बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां कराता है। इस ईश्वरीय जीवन में हरेक के पास अच्छे अनुभव होंगे। मैं हेम सिंह भाई जी से ये जानना चाहूंगा, क्या आपके जीवन में भी कोई एक ऐसा अनुभव है जिसको याद करके आप बहुत रोमांचित हो जाते हो, या उसको याद करने से बाबा की कुछ ऐसी मदद जिसको बहुत खुशी मिलती हो आपको?
सबसे बड़ी बात तो बाबा की याद जो है वही खुशी देती है, लेकिन कई बार कोई समस्या आ जाती है और बाबा उसका समाधान देता है तो और भी खुशी होती है। तो एक बार की बात है, हम गुवाहाटी की तरफ गए थे तो शिलोंग ऊपर चेरापूंजी की तरफ से आ रहे थे, तो वहाँ वैसे भी उग्रवादियों का बहुत होता है तो लोग चर्चा भी करते रहते हैं। एक उसी टाइम हम लोग क्लास वगैरह करा के उधर से आ रहे थे चेरापूंजी की तरफ से, तो रास्ते में उग्रवादी आ गए और गाड़ी को रोका हुआ था, कुछ गाड़ियों को और भी रोका हुआ था, और हमारी गाड़ी को भी एक उछलता हुआ ऐसे आया कोई कमांडो टाइप, उसने लात मारी। लात मारते ही पहले तो वो पुराने वाले संस्कार एक बार जागृत होने लगे कि भाई हम भी, फिर याद आया कि नहीं ये अपना काम नहीं है। फिर तुरंत बाबा की बात याद आई कि सोमान में अगर आप स्थित हो तो बाबा आपका रक्षक है, और देह अभिमान में हो तो तुम अपना तुम जानो। तो मैं जैसे कि एकदम सोमान में स्थित हो गया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, बस उसको ये सोमान में रह के देख रहा हूँ। देखते ही पता नहीं उसको क्या हुआ, एक लात तो उसने मारी और गाड़ी में जो थे वो एकदम पूरे घबरा गए सब बैठे हुए भाई बहने, लेकिन मैं एकदम एकाग्र हो गया और उसने एक लात मारी और पता नहीं उसके मन में कुछ बोला भी नहीं वो, और सब गाड़ियों को छोड़ दिया और वो गाड़ी को लेके अपना आगे आगे जाने लगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उस टाइम पे जब विघ्न परिस्थिति आई उस टाइम मैंने बाबा की बात को यूज किया तो एकदम खुशी की बात हो गई। ऐसे ही एक दूसरा अनुभव है कि एक बार यहीं पे मैं क्लास वगैरह करके योग करके मैं बड़ा योग युक्त होके जा रहा था, तो वहां जाते ही हमारे मेजर साहब थे तो उन्होंने बोला कि भाई ये बहन जी इनका बेच सोने का बेच गुम हो गया के, तो थोड़ा आप देखो। तो मैंने क्या किया, बहन जी के साथ जा रहा हूं मैं, बोला कहाँ गुम हुआ है, बोला यहाँ गुम हुआ है, किस पे शक है, बोला इस पे शक है उस पे शक है, वो अपनी बातें कह रहे थे, मैं बाबा से बात कर रहा हूं, मैंने कहा बाबा कहाँ होगा ये, और अंदर ही अंदर बाबा को याद कर रहा हूं कि मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ मदद करो, कहाँ है वो भेज। तो मैं बस योग युक्त होके गया, वो बहन जी बोलती रही कि ये है, मैं उसकी बात कुछ नहीं सुन रहा। मैं गया और मुझे पता नहीं जैसे टच हुआ के तखिया, मैं जाके मैंने तखिए को एकदम यूं उठाया, यूं उठाते ही तो भेज तक देसी नीचे आ गया। तो बहन जी आश्चर्य करे कि आपको पहले ही पता था क्या, बोला इस तकिए को तो मैंने कितनी बार ऊपर नीचे कर लिया लेकिन बेच तो निकला ही नहीं, और आपने तो एक ही बार यूं किया और बेच निकल गया। तो ये भी मैंने देखा कि जैसे ही बाबा को यूज किया तो एक खुशी की लहर आ गई। ऐसे ही तीसरा अनुभव और है कि एक बहन जी था उनको कहीं मुझे नीचे लेके जाना था, उनका भी सोने का बेच गुम हो गया। तो वो बोलते हैं कि अब यहाँ बताएंगे तो हम यहाँ लोग बुरा मानेंगे कि भाई यहाँ पे क्या यहाँ कोई चोर है क्या मधुबन के अंदर जो ये बेच गुम हो गया। तो बोला कि भाई जी मेरा सोने का बेच गुम हो गया, तो मैंने कहा चिंता नहीं करो अभी मैं ढूंढता हूं। तो तुरंत मैंने वही वाला अभ्यास किया, मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ मदद करो, और मैं उसी सामान से गया वहां पे। तो मैंने पूछा वहां भाई छोटेलाल भाई ये सब आंगन में बैठे थे, मैंने कहा यहाँ सफाई कौन करता है, तो बोला एक नई बहन को भेजा है आज, तो मैंने कहा उसको बुलाओ। तो बुलाया उसको, मैं बोला कि भाई यहाँ बेच था कहाँ गया हो, बोला नहीं भाई जी हमको तो पता नहीं है क्या। मैं बोला आपको मालूम है कि सीबीआई के हैं के पूरे जो है आपके घर को उधेड़ के रख देंगे ये, इसलिए जहां भी रखा हो तुरंत बेच को लेके आओ। तो बोला भाई जी मुझे पता नहीं है। मैं बोला सोच लो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, कहाँ झाड़ू कहाँ लगाया कचरा कहाँ फेंका है उस कचरे में जाके देखो। तो वो कचरे में जाके देखी और कचरे में भाई जी बेच मिल गया के। तो मैंने देखा कि उसमें भी एक खुशी की लहर आ गई मन में कि उसी संकल्प से जो बाबा को कहा। तो जीवन में कोई भी समस्याएं या कोई प्रॉब्लम आता है तो हम बाबा को यूज करते हैं और वो काम हो जाता है तो एक खुशी की लहर आ जाती है।
जी जी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना, हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाबा से सॉल्व करवाते रहें और बाबा भी प्यार से करता रहता है। ये एक प्यार है जो भगवान हमारी छोटी छोटी बातों में भी हमारी मदद करता है। सुरेश भाई जी को सुनाना चाहते हैं? जना जरूर सुनाए।
तो हेम सिंह भाई जी बोलते, मेरे कोई घटना याद आई, तो 1990 में हमारा पिताजी शरीर छोड़ा। उस समय तो हम सरेंडर हो गया था, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद घर गया, तो उस समय तीन बहनें शादी हो गए थे। एक ही बहन था, उसका नाम है उमा बहन करके। तो मैं सोच के गया, बाबा कैसे भी हम घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ काम करके आना, आपका जिम्मेदारी, आप मेरे साथ आना। तो ऐसे करके गया, तो पिताजी का पूरा सभी हो गया अतिथि, तो तीन दिन उधर रहा। तो वापस आने के समय हम पहले बहन मेरे, क्योंकि हमारा, मैं खुद भोजन पकाता था क्योंकि घर से भोजन नहीं करता था, तो हमारा मामा वगैरह बोला, तो आपका बहन तो कुमारी है तो उनसे भोजन पकाने के लिए मदद ले लो। तो उन यही मौका करके मैं सारा बहन को बोला, देखो आप जैसा इतना हजारों बहनी लोग हैं, मेरे साथ आप आ जाओ, बहुत ही सुंदर जीवन हो जाता। क्योंकि उस तक उनको ज्ञान मालूम नहीं है, दसवीं पूरा किया था। तो बोलते ही उनको एक टच हो गया होगा, मोस्टली हमारे भाई बोले तो भाई के साथ चले जाएंगे, लेकिन चले जाने के लिए उतना ईजी होता है क्या, गाँव में छोड़ेगा नहीं ये रिलेशन वगैरह। तो ऐसे संदर्भ में तो तीन दिन हो गया, तीसरा दिन मैं वापस आना, क्योंकि गांव से हमारा बस का रोड में आने के लिए 2 किलोमीटर पैदल करके आना पड़ता है। तो उधर एक ही प्राइवेट बस है, शाम का समय 4 बजे बस निकलता है। तो वो बस गया तो हमारा प्लान पूरा अपसेट हो जाता है। फिर पहले बोल के रखा, तो हम निकलने वाला है, 4 बजे बस है, 3 बजे निकलेंगे। तो मेरा सिस्टर सभी रेडी होकर बैठ गया, मैं भाई के साथ जाऊंगा। तो उस समय मेरा एक छोटा भाई था, उसका नाम है रेवण्णा करके, वो रावण जैसा बहुत पावरफुल, कहाँ जाएंगे देखेंगे, आप जाएंगे तो रूम में आप ताला लगा देंगे, ऐसे कुछ बोल रहा था। मैं बाबा को बोला, बाबा कैसे भी करके आपका काम है, आप प्रोटेक्शन करना ही, रक्षा करना आपका काम है। तो ऐसे करते करते टाइम हो गया, तो सब लोग, मैं बहन को पहले बोल के रखा था, सब लोग मीटिंग करेगा, मेरे को आके पूछेगा, इनको थोड़ा सा अच्छा बोलो, अभी पिताजी शरीर छोड़ा, मम्मी अकेले दुखी हो जाता है, अभी भी आप ये आपके साथ आएंगे तो इनको बहुत दुख हो जाता है, मम्मी को, इसके लिए अभी जाना नहीं है, तो बोलो उनको। तो मैं पहले बोल के रखा था, सबके सामने मैं बोल देता हूँ आप मेरे साथ नहीं आना, अभी तीन चार मास के बाद फिर मैं आएंगे, उस समय आप मेरे साथ आ सकते हैं। तो मैं इसे बोल देता हूँ, बोलने के बाद आप उठ के खड़े होके, भाई मेरे साथ, मेरे को आपके साथ लेके जाना, अकस्मात आप लेके नहीं जाएंगे तो मैं कहीं जाके मर जाएंगे, ऐसे बोल दो सबके सामने। ऐसे बोल दिया पहले, तो सभी अंदर ही अंदर ही बातचीत हो गया। तो दूसरे दिन आ गया, तो मैं सूटकेस लेके 3 बजे घर से बाहर निकला, तो मेरा सिस्टर भी बैग पकड़ के मेरे पीछे आने लगा। मेरे पीछे आती ही तो वो रेवण्णा करके भाई था ना, वो पकड़ के उसको खींच लिया, खींचने के बाद वो गिर गया। गिरने के बाद मैं बाबा का, बाबा, गिरने के बाद मेरा मामा था ना, मामा पावरफुल, उस थोड़ा सा बारिश का सीजन था, उनके पास छाता था, छाता से उनको ऐसे मारा, मारने से वो उनका पावर कम हो गया, वो पीछे चले गया। तो मेरा सिस्टर मेरे साथ आने लगे, क्योंकि 2 किलोमीटर रास्ते में आना चाहिए ना, बस लेट हो गया, 4 बजे मिस हो गया तो बस प्लान अपसेट हो जाता है। तो फिर मैं आने लगा, मेरा पीछे मेरा बहन भी आने लगा। तो सब लोग ऐसे बोला, मैं बोला किसी भी कारण से आप मेरे साथ आना, मैं बाद में आएंगे, आप अभी नहीं आओ, मम्मी दुखी है, इसे बोले तो मैं आता हूँ, नहीं आएंगे तो मैं कहीं भी शरीर छोड़ देंगे करके सबके सामने बोल दिया। बोलने के सबको डर लगा। उसके बाद मेरा सिस्टर भी मेरे पीछे आने लगा, मैं भी जाने लगा। तो बस उस समय आधा घंटा लेट हो गया, तो बस स्टैंड में भाग भाग के आया, तो मेरा बहन भी भाग के मेरे पास आया, मेरे साथ आया। तो बस स्टैंड में आते लोग सभी खड़े हैं, क्या बोले तो आज प्राइवेट बस लेट हो गया है तो आया नहीं है। हम बस स्टैंड में आया तो आते ही 2 मिनट में बस आया। तो लोगों को पूछा क्यों बस लेट आया, तो पीछे का एक स्टेशन में बस टायर पंचर हो गया, तो उसको रिपेयर करने के समय आधा घंटा लेट हो गया। मन बाबा ने कैसे मदद किया। उसके बाद मेरा सिस्टर मेरे साथ आया, तो अभी भी 30 साल से सरेंडर है, सेंटर खोला है, सेंटर में समर्पित रूप में सेवा करता है। तो अभी भी याद करते हैं, भैया उस दिन आया तो मेरा जीवन धन्य हो गया, नहीं तो
बस ने आपकी बहन जी को ब्रह्मा कुमारी बना दिया जी। अच्छे अच्छे अनुभव ऐसे बाबा के बच्चों के साथ होते हैं, बाबा के मदद के। पर छोटी सी बात है बस का, लेकिन वो एक छोटी सी, कितने अगर वो मिस हो जाती तो शायद उस बहन का भविष्य कुछ और होता, परंतु बाबा ने मदद की, बस को पंचर कर दिया। पंचर करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने कर दिया, तो बहन का जीवन कितना सुंदर हो गया। अभी हेम सिंह भाई जी से एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, समय भी बीतता जा रहा है, कम समय है हमारे पास। हेम सिंह भाई जी, जब आप पहली बार मधुबन आए, वैसे जो भी मधुबन आता है इसके गुण गाते नहीं थकता है, कहते हैं कि स्वर्ग है, कोई कहता है देवभूमि है, कोई कहता है अगर किसी को धरती पर स्वर्ग देखना है तो मधुबन आना चाहिए। आप जब पहली बार मधुबन आए, उस समय का आपका अनुभव क्या था?
मैंने एक भाई का अनुभव सुना था, एक मैंने धोबी घाट में वो सेवा करके आया था, तो सेंटर पे मैंने सुना कि भाई मेरा जैसा ही एक भाई है छोटा सा, उसको बिठा रखा है संदली पे, तो मैं सोचा कौन सा पाड़ तोड़ के आया है। बोला एक महीना धोबी घाट में सेवा करके आया मधुबन में, तो मेरे को संकल्प आया कि मुझे भी जाना है, कि ये कौन सा है, अगर ये एक महीना किया तो मैं दो महीना करूंगा। तो इस लक्ष्य से मैं यहाँ मधुबन में आया। तो यहाँ आके मैंने देखा कि सबसे पहले यहाँ भोजन का खिलाने में मेरी सेवा लगी, तो भोजन कराते थे, हम 2 बजे उठते थे बाबा के कमरे, क्योंकि मैं घर में भी बाबा के सामने घंटों घंटों बैठा रहता था और मेरा योग लगा ही रहता था। और जब यहाँ आ गया बाबा के कमरे में तो पूछो मत, और सेंटर के ऊपर भी ऐसा ही होता था कि बहन जी परेशान हो जाती थी कि भाई ये उठे कब के, मुरली भी चल गई फिर भी ये बैठा ही रहता है के। तो वो फिर बीच बीच में क्या, ये सेवा करके आ जाओ, तो वो सेवा करके आगे फिर आके बैठ गया, बोला ये सेवा करके आओ। जैसे हनुमान जी वाली बात तो हो गई कि हनुमान जी को कोई भी काम बोले करके आते फिर बैठ जाते राम जी के चरणों में। तो मुझे भी जो है मतलब घर में ही बहुत अच्छा योग लगता रहा, और जब सेंटर पे आया तो और भी अच्छा, और मधुबन में आया तो और भी ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पे एक महीने की सेवा के हिसाब से आए थे, तो बाबा का कमरा एक, जैसे हम लोग 2 बजे उठते थे तो पहले बाबा के कमरे में जाते थे, फिर अमरनाथ को जो दूसरा निराकारी बाबा है उसमें जाते थे, ऐसे करके हमारा टाइम बीत जाता था। फिर वो आके भाई टाइम पूरा हो गया आप जाइए सेवा, तो फिर हमने जैसे तैसे तिकड़म लगाया, मैंने कहा अभी तो 15 ही दिन हुए हैं, उस भाई का तो रिकॉर्ड टूटा ही नहीं है। तो फिर बाद में मैंने किसी को राजी करके और ये इसमें साउंड सेक्शन में मैंने सेवा ली, तो यहाँ साउंड सेक्शन में हमको भेज दिया। अब यहाँ पे क्या होता था कि रोज माइक देना और क्लासे सुनना, तो ज्ञान अंदर ही अंदर ज्ञान जाता रहता था, और बस 2 बजे उठते थे और योग इतना अच्छा। फिर यहाँ से डिपार्टमेंट में जाते तो वहाँ नए नए गीत होते थे, तो वो सुनते रहते थे, ऐसे झूमते रहते थे कि पूछो मत। एक साइलेंस का बेच और लगा लिया, एक बार गीता बहन जी ने नाम पूछा कि नाम क्या है, तो मैं दूसरे को इशारा कर रहा हूँ, तो उसने भी डांटा, बोला ये क्या सेवा करता होगा के, ये तो बोलता भी नहीं है के। तो मैं सोचा हमारी वहाँ की दीदियाँ तो अच्छी होती है, तो यहाँ तो बहुत गुस्सा करती है। तो फिर ठीक है, मैं अपना अच्छा अनुभव कर रहा था। उसके बाद फिर देखा कि भाई यहाँ तो 15 दिन पूरे हुए, बोला फिर जाइए। तो मैंने कहा अभी तो एक ही महीना हुआ, उस भाई का तो रिकॉर्ड टूटा ही नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सेवा की, उनको जैसे तैसे राजी करके, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल में सेवा की और अपना योग ध्यान करता रहा। इसी पीरियड में मेरे को लगा कि यार हेम सिंह तो वहाँ क्या है कि यहाँ इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, और निर्बंधन भी है, भगवान कल्प में एक ही बार तो आता है कि समर्पित हो जा। फिर मैंने एक भाई से पूछा मैं समर्पित हो सकता हूँ क्या, तो उसने मैंने अपनी शक्ल देख समर्पित होगा यहाँ, तो मेरे को एकदम जैसे कि थोड़ा डाउन कर दिया। फिर मेरे को बाबा के सामने मैं बोला बाबा अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं आपसे ही बात करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा यहाँ पे, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मुझे समर्पित होना है, लेकिन यहाँ किसी को बोलूंगा नहीं मैं कि कैसे समर्पित होना है। तो बस मैं मधुबन भी जाता तो यही बात बोलता, अमृत वेले भी योग के बाद बाबा को यही बात बोलता। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग कराटे का भी कार्यक्रम करते थे, यहाँ पे एक ब्लैक बेल्ट भाई था वो भी आ गया, उसको भाषा भी नहीं आती थी लेकिन वो मेरी भाषा समझता, मैं उसकी भाषा समझता, और दोनों यहाँ स्टेज के ऊपर कार्यक्रम करते थे। कभी हम तलवार से युद्ध करते थे, कभी गधा से युद्ध करते थे, कभी लकड़ी से युद्ध करते थे, कभी नान चाकू से युद्ध करते थे, और अगर यूं तलवार मारे तो कैसे रोकना है, अगर कोई ऊपर से तलवार मारे तो कैसे रोकना है। तो इस तरह से हम रोज एक्सरसाइज करते थे, इतना अच्छा अनुभव। फिर एक्सरसाइज करके घंटों और बैठते थे योग में, टांग पे टांग चढ़ा के, तो जैसे कि बस इतना अच्छा अनुभव होता था यहाँ पे कि पूछो मत। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जब समर्पित की बात मैंने बाबा से कही, तो बाबा ने क्या किया कि एक बार अनाउंसमेंट हुआ यहाँ पे कि जो हार्ड वर्कर भाई है वो यहाँ पे अनाज डिपार्टमेंट में बोरियां आई है तो खाली करने के लिए हाजिर हो जाए। तो हम लोग सबसे आगे, क्योंकि हम लोग इतनी एक्सरसाइज करते थे कि अगर एक घंटा मेरे कोई मारे तो लगती नहीं थी। इस प्रकार से घंटों एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाना और ये कराटे की प्रैक्टिस करना, इस तरह से। तो वहां गए हम, बोरियां ट्रक देखा, बोरियों को हमने ऐसे धड़ाधड़ फेंकी कि कुछ ही टाइम में वो ट्रक को हमने खाली कर दिया। तो वो इंचार्ज भाई बोले कि आप फ्री है क्या, घर से फ्री है? मैं बोला हाँ फ्री हूं। तो वो तुरंत शाम को ही मुझे ले गया वहां पे, मधुबन में ले गया, दादी प्रकाशमणि से मिलाया। उस टाइम दादा थे, वल्लभ दादा, उनसे मिलाया कि ये भाई हमको चाहिए के अनाज डिपार्टमेंट में चाहिए के। तो उनको बताया होगा, तो उन्होंने बोला आप निर्बंधन हो? मैं बोला हाँ। घर से छुट्टी मिल जाएगी? बोला हाँ। बोला अभी आप कौन से डिपार्टमेंट में? बोला इलेक्ट्रिकल में। तो बोला वहां से छुट्टी मिलेगी? तो मैंने कहा मिल जाएगी, वहां भी सेवा ही कर रहा हूं मैं। तो फिर क्या हुआ कि मैं यहाँ आया और दादी ने भी बोला कि भाई आप एक बार घर जाना, आप निर्बंधन है, बहुत अच्छी बात है, सेवा आप यहाँ करना। तो दादी से भी हम मुलाकात करके आ गए, यहाँ आए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। उस टाइम यहाँ शंकर भाई जी थे, तो उन्होंने बोला आप तो यहाँ भी तो हो सकते हो क्या समर्पित? तो मैंने कहा यह तो दूसरा नंबर मेरा लग गया। बोला अभी नीचे भी कार्यक्रम होने वाला है, बड़ा शांतिवन बनना है, वहां के लिए भी चाहिए, यहाँ भी कारोबार है। अच्छा, फिर गीता बहन जी बोलती है, बोला कि हेम सिंह भाई आपका ज्ञान योग बहुत बढ़िया है और आप चाहो तो यहाँ समर्पित हो सकते हो, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, ये जंगल के बीच में है, तो आप लोग कराटे वगैरह करते हो तो आप और पांडियन जो है दोनों आप यहाँ हो सकते हो। तो मैंने देखा कि भाई, मैंने बाबा को बोला तो इधर से भी बुलावा, इधर से भी बुलावा, इधर से भी, फिर
सब दरवाजे,
हाँ, फिर दीदी बोलती है ऐसा करो आप मधु वहां चले जाओ सेंटर एक बार जाके आओ। उन्होंने सोचा निर्बंधन नहीं होगा तो वहीं रुक जाएगा। तो वहां जाके मैं बोला भाई वहां मेरा नंबर लग गया है क्या? तो बहन जी बोलती है अपना बोरी बिस्तर लिया और यहाँ आ जाओ, सेंटर पे समर्पित हो जाओ। फिर मैंने देखा ये तो यहां भी नंबर लग रहा है मेरा। तो फिर उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें चंद्रमणि दादी हमारे घर गई और ओम प्रकाश भाई जी, ये सब लोग आए। तो वहां पे जब उनको पता लगा कि भाई, उन्होंने बोला कि जो समर्पित होना चाहता केक काटो, और दादी ने, इन्होंने गीता दीदी ने बात की कि भाई ये भाई हमको चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो केक काटो, केक मोमबत्ती जलाने आ जाओ जो समर्पित होना चाहता है। तो मैं और घनश्याम भाई हमने वो किया। तो उनको मालूम पड़ा, उन्होंने बोला आप ऐसे करो अपने हेडक्वार्टर में आओ एक महीने के लिए। तो मैं बोला मुझे तो वहां समर्पित होना है।
हेडक्वार्टर में नहीं, इंदौर, इंदौर,
इंदौर में। तो बोला कि वहां आओ ना आप। तो मैं बोला भाई जी मुझे तो वहां समर्पित होना। बोला आओ तो सही, वहां देखो तो सही कम से कम। तो मैं बोला आप बड़े बोल रहे हैं तो क्या करें। गया मैं, अब सुबह मतलब अमृत वेला उठता था, दो बजे उठ के यही बाबा से कहता था बाबा बस मुझे बुला लो। तो एक दिन भाई जी ने बुलाया, बोला भाई हेम सिंह भाई मिलते नहीं हो क्या, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसा लग रहा है? मैं बोला अच्छा लग रहा है। तो बोला अभी तो यहीं रहना? मैं बोला नहीं। बोला कब जाना? मैं बोला आज अभी इसी वक्त भेज दो। तो उनको लगा कि भाई ये रुकने वाला नहीं है। तो फिर बोला अरे बहनों को बुलाओ, किसने कुछ बोला कि कैसे जा रहा है, जाने के लिए क्यों बोल रहा है, क्या तकलीफ है इसको? तो मैं बोला भाई जी किसी ने भी कुछ नहीं बोला है और मेरे को वहीं जाना है। तो उस टाइम फिर मैं जूरिस्ट विंग का ग्रुप आ रहा था यहाँ कोई कार्यक्रम, वो लेके मैं यहाँ आ गया। तो मधुबन तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव है, आज तक भी हो रहा है,
बहुत अच्छा अनुभव। एक कहीं एक बार भी मौका नहीं मिल रहा था और फिर मौकों की अंबार आ गए, बहुत अच्छा। आपसे ही एक प्रश्न और भी है, अक्सर लोग जो गृहस्थ में रहते हैं, चाहे वह बाबा के बच्चे हों या नॉन बीकेस, मैं बीकेस की बात करता हूं, जो लोग प्रवृत्ति में रहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो लोग समर्पित हैं उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। और अक्सर कहते हैं आप लोग तो समर्पित हो, आपको क्या पता गृहस्थी कैसे चलती है, बच्चों को कैसे संभालना है, धन कैसे कमाना है, पति पत्नी के झगड़े कैसे निपटाए जाते हैं, आपके जीवन में तो मौज ही मौज है। आपको क्या लगता है, समर्पित जीवन में कोई समस्या नहीं है?
वैसे तो मौज ही मौज है, अगर योग करते रहो और ज्ञान युक्त होके चलो तो मौज ही है। बाकी परिस्थितियां विघन तो यहाँ वैरायटी है, वैरायटी लोग है यहाँ पे। कभी कभी तो आप देख के सोचोगे ये क्या हो रहा है, कि ये क्या कर रहा है। लेकिन बुद्धि में अगर ज्ञान हो, भाई राजधानी स्थापित हो रही है कि यहाँ पे राजा बनने वाले भी लोग है, प्रजा बनने वाले भी है, दास दासियां बनने वाले भी है, सब है यहाँ पे, अगर उस ज्ञान की दृष्टि से चलते रहो तो कोई समस्या नहीं है। और वैसे देखो तो आप एक दिन भी यहाँ रहोगे और आपके सामने वो सिचुएशन आएगी तो आप छोड़ के भाग जाओगे, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी। जो समस्या विघ्न तो कहीं भी आ सकती है, लेकिन अपने को ये संभाल के रखना हमारे हाथ में है।
बहुत बढ़िया सुरेश भाई जी, अब 5 मिनट समय है, संक्षेप में मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। आपको साधु संत महात्माओं की सेवा का काफी अच्छा तजुर्बा है, गीता पर भी आपकी काफी अच्छी मास्टरी है, और साउथ में बहुत सारे संत महात्माएं होते हैं, और बाबा का अक्सर ये हमेशा से कहना रहा है कि बच्चे गीता के भगवान को सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है, ये सबको बताओ और पहले साधु संत महात्माओं को बताओ, वो मानेंगे तो संसार मानेगा। अभी अभी शांतिवन में आप सबको पता होगा गीता के भगवान पर एक बड़ा कार्यक्रम भी चला है। अब तो खैर लोग धीरे धीरे थोड़ा सा अब समझने लगे हैं इस बात को। शुरू में जब आप उधर थे 96 से पहले, तो जब गीता का भगवान के बारे में आप उनको सुनाते थे तो उनके क्या रिएक्शंस होते थे?
एक्चुअली हम हुबली बसराज भाई जी ने एक बार कृष्ण जन्माष्टमी का समय में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, बाहर वाला कृष्ण का भक्त माना उनको भी, हम हमारे लोगों को भी 3-4 लोगों को तैयार किया है। तो श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे कौन सा श्लोक है वो आप खंड करके रेडी होना, तो वो लोग भी भाषण करेगा, हम भी भाषण करेंगे उनके होने के बाद। तो हम उस समय बहुत कंठ किया, 50-60-100 तक हम श्लोक को कंठ किया, तो सारा गीता को पढ़ा है, उसके में बाबा के बारे में क्या क्या श्लोक है। तो ऐसे प्रोग्राम चला, उस समय हम मैं और दो बहने थे और एक भाई था, तो 4 लोग हम था, वो लोग 4 लोग भी बाहर का गीता वगैरह पढ़ा लिखा हुआ। तो हम स्पष्ट किया तो उसमें अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 17 में एक श्लोक है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्षाम यजुरीवचा। तो ऐसे एक श्लोक था, मैं ऐसे स्पष्ट किया, देखो तो जगत का माता पिता कौन है, पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह, कोई भी व्यक्ति ऐसे बोल नहीं सकता सारा जगत का पिता, जगत का माना सारा।
सुरेश भाई जी मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोकना चाहूंगा, समय नहीं है हमारे पास, मेरा प्रश्न ये है कि जब गीता का भगवान शिव है हम उनको ये बताते थे, कोई भी तर्क हो सकता है, उनका भी तर्क हमारा भी तर्क, जब हम अपने तर्क से उनको समझाते थे तो क्या वो संतुष्ट हो पाते थे?
Actually,
और अगर नहीं हो पाते थे तो हमारे साथ उनका इतना अच्छा जो रिलेशन था वो कैसे था?
एक्चुअली वो लोग ये सारा सुनता था, सुनने के बाद हमारा ये सारा एक्टिविटी देखकर, हम कितना भी वो लोग बोले हम कुछ उसको एगेनेस्ट नहीं बोलता था, तो प्यार से हम बोलता था, वो लोग एक्सेप्ट करता था। तो आप लोग क्या बोलते वो भी ठीक है, इसका भी कुछ रहस्य, हम भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसे कुछ बोल के हमको बहुत रेस्पेक्ट देता था। अभी भी लोग इसको स्वीकार किया, उसके आधार से बहुत लोग भी इसको स्वीकार करता है, कोई भी अपोजिट नहीं है। तो बहुत एक बार बहुत बड़ा संत आया था तो हम इस आर्ट गैलरी समझाया था, उसके बाद उनको पूरा समझ में आ गया ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो वो सुन के बाहर आने के बाद तो उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखे, सुरेश सुरेश ये बहुत ही अच्छा ज्ञान, सच्चा ज्ञान है, लेकिन हम सभी इसको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हम एक बड़ा भक्त का समूह में है तो हमारा निपटना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा ये,
कई बार ये भी होता है कि उनकी अपनी एक भक्त मंडली होती है तो मानते हुए भी स्वीकार कर पाना कठिन होता है, लेकिन जो हमारी नियम धारणाएं हैं, हमारा स्नेह है, जो हमारी टीचर्स बहने हैं उनका एक जो अनवरत प्रयास और एक जो निस्वार्थ प्रेम है वो उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और वो फिर हमारे फेवर में रहते हैं। मैं बनारस से हूं तो एक छोटा सा मैं दृष्टांत आपको बता दूं, वहां बहुत बड़े बड़े संत हैं, ज्ञान नहीं मानते लेकिन संस्था को इतना मानते हैं, बहनों के प्रति इतनी इज्जत है। एक बनारस के बहुत बड़े संत रक्षाबंधन के दिन हमारी जो सुरेंद्र दीदी है उनकी तबीयत खराब हो गई, वो नहीं जा पाई राखी बांधने, हर साल उनको राखी बांधने जाती थी, उनका फोन आया, सुरेंद्र दीदी इस बार आप राखी बांधने क्यों नहीं आए हमारे पास? तो बोला भैया हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अरे बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो भाई तो आ सकता है ना, आधे घंटे के अंदर वो सेंटर पे आ गए। तो भले वो हमारा ज्ञान माने ना माने, लेकिन जो हमारी धारणाएं हैं, हमारी पवित्रता है, हमारी तपस्या है, हमारा जो प्यार है जो बाबा ने सिखाया, वो जरूर उनको कहीं ना कहीं असर तो करता ही है। समय हो गया है, लास्ट में एक प्रश्न मैं पूछ करके हेम सिंह भाई जी से इसको पूरा करना चाहूंगा। दोनों भाई बहुत पुराने भाई हैं और लंबे समय तक दादियों के अंग संग रहने का अनुभव है। आप दोनों ने बहुत पालना ली है दादियों से, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे दादियों के संग के। समय नहीं है इसलिए मैं सिर्फ हेम सिंह भाई जी से एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा। किसी दादी के संग का कोई एक अच्छा सा कोई अनुभव अगर आप सुनाना चाहें तो सुनाएं।
मनोहर दादी के साथ भी मैं रहा हूं एक साल तक, जब लास्ट में बीमार थी तो बहुत यहाँ खेल पाल हम करते थे, मुरली के बाद में हम यहीं बैठे रहते थे अक्सर करके। तो दादी को कोई भी कुछ बोलता था, दादी आपको इधर बिठा दिया, उधर बिठा दिया, आपसे पूछा नहीं है, तो दादी हमेशा निरसंकल्प रहती थी। अरे मेरे से नहीं पूछा ना, तेरे को क्या करना है। बोला दादी आपको उधर बिठा दिया, बोला मेरे को बिठा है ना, तुझे क्या है। तो दादी हर बात में मतलब संतुष्ट थी, खुश थी। मैं वहां स्टारलिंग में भर्ती किया हुआ था दादी को, तो दादी मेरे को बोलती है चलो ना वहां मधुबन। तो मैं बोला कि अभी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बोले मेरे को क्या तकलीफ है, कह मैं तो ठीक ही हूं कह। अब दादी से उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा, लेकिन दादी उसमें भी अपने आप में जैसे कि लेट गई, पहले बैठी बैठी चलती थी दादी, फिर लेट गई तो भी वो अपने आप में संतुष्ट थी। ऐसे ही दादी प्रकाशमणि जी का एक अनुभव है कि एक बार दादी से हमने पूछा कि दादी आप दादी कैसे बन गई, तो दादी ने बोला आप सबने बनाया। तो बोला कि भाई कोई तो विशेषता होगी आपके अंदर के 350 लोग थे उस टाइम पर, आपको ही बाबा ने क्यों रखा। तो दादी ने कहा कि जब बाबा मम्मा कोई भी सेवा के लिए बोलते थे तो सबसे पहला हाथ मेरा उठता था कि ये सेवा मैं करूंगी। तो बोला अगर वो सेवा आपसे नहीं होती थी तो बोला मैं मम्मा के पास जाती थी कि मम्मा आप बताओ कि ये सेवा कैसे करूं, तो मम्मा उपाय बताती थी। तो बोला अगर मम्मा को भी ना आए तो फिर तो वो मैं बाबा के पास चली जाती थी कि प्यारे बाबा मीठे बाबा मैंने आज्ञाकारी बन के हाथ उठाया है, लेकिन ये सेवा करनी कैसी है, आप तो बुद्धिमानों के बुद्धि है, बताओ कैसे करनी है। तो बाबा खुद उसको उसका हल देता था। तो कहने का मतलब है कि दादी की तरह आगे जाना है तो हर सेवा में सबसे पहला हाथ हमारा उठना चाहिए। तो ये एक शिक्षा मिलती है दादी की बात से।
हम सभी हुबली से आने के समय चार चार ट्रेन चेंज करके आना पड़ता था मधुबन में, उस समय का बात है। तो आते ही इधर बहुत तक जाता था। मधुबन प्रांगण में आते ही उस समय केवल मधुबन का कैंपस था। 95 तक सभी बड़े भाई दादियां वगैरह सब लोग उधर ही रहता था। तो पांडवन में प्रांगण में बस आते ही सभी दादी दीदी सब खड़े होके आओ बच्चे आओ बाबा का मधुबन में आप सभी को स्वागत हो ऐसे दादी हाथ ऐसे कर लेते था। ऐसे करते करते हमारे चार दिन का क्या थकान था सब मिट जाता था। तो दादी जी इतना दादियों का प्यार तो वर्णनातीत है, वो वर्णन करने के लिए भी बहुत लंबा समय चाहिए। ओम शांति
जी। दादियों का तो सचमुच बहुत ही अच्छा अनुभव हर एक को है जिन्होंने दादियों को देखा है, जिन्होंने दादियों से पालना ली है। बेशक हम लोगों ने बाबा को तो नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, लेकिन इतना संतोष जरूर रहता है कि हम लोगों ने दादियों को नजदीक से देखा और उनका भरपूर प्यार पाया है। मनोहर दादी तो इतना प्यार करती थी, कई बार मनोहर दादी नाश्ता कर रही होती थी और मैं कई बार अगर उनके किचन में पहुंच जाता था तो मुंह में काटा हुआ मेरे मुंह में डाल देती थी। माना एक होता ना एक माँ जैसे, उसको ये फील नहीं होता है ना कि ये मेरा जूठा है। एक बार दादी डोसा खा रही थी और डोसा खा रही थी, वो चटनी में डुबोया और आधा खाया और मैं तभी जाके खड़ा हो गया। मैं पूछा दादी क्या खा रहे हैं, कह रहे डोसा खा रही हूँ, खाएगा क्या। मैं बोला खाऊंगा। वो आधा कटा मुंह में काटा हुआ मेरे मुंह में डाल दिया। हम लोग को भी ये फील नहीं होता था, माना एक अजीब सा बॉन्डिंग, एक अजीब सा प्यार। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं और ये अनुभव जब भी याद आते हैं आत्मा को बहुत बल प्रदान करते हैं। दादियां कहती थी जो हमने देखा वो तुमने ना देखा। हम लोग भी कई बार यही अनुभव करते हैं कि जो हमने देखा आज वालों ने नहीं देखा, लेकिन जो आपने अब अनुभव किया शायद आने वाले दिनों में बाद के लोग वो भी ना कर पाए। तो जब जो आया उसके लिए वही सही समय है, वही उचित, वही अच्छा, वही गुणकारी है। तो ये आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। दो मिनट बाबा की याद में बैठते हैं।